अथर्ववेदीय ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस उपनिषद के द्वितीय प्रश्नात्मक प्रकरण का विचार हम लोग कर चुके हैं, पंचम मंत्र तक का, जो द्वितीय तथा तृतीय प्रश्न है अपर विद्या के उपासनात्मक अंश का स्वरूप वर्णन करता है। इसमें बताया जा रहा है प्राण की उपासना रूप अपर विद्या के स्वरूप को। उपासना मानी जाती है गुण चिंतनम, उपासनम के अनुसार गुणों का चिंतन उपास्य के, इसलिए उपास्य प्राण में गुण वर्णन किए जा रहे हैं द्वितीय प्रश्न तथा उसके उत्तरात्मक प्रकरण के द्वारा। पहले प्राण में बताए गए एक आख्यायिका के माध्यम से शरीर विधारकत्व रूप गुण तथा वरिष्ठत्व रूप गुण को, ये दो गुण बताए गए। प्राण ही इस शरीर को मुख्य रूप से धारण करके रखता है और बाकी प्राण से शक्ति पाकर के वागादि वदनादि व्यापार करते हुए सहयोग करते हैं शरीर धारण करने में। लेकिन शरीर धारण करना ये मुख्य रूप से व्यापार यानी गुण माना जाता है प्राण का। और कह वरिष्ठ, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा गया कि तान वरिष्ठ प्राण उवाच, इसमें प्राण का वरिष्ठत्व विशेषण देकर के वरिष्ठत्व एक गुण बताया गया प्राण में, कि मुख्य प्राण ही इन सब में वरिष्ठ है। और मुख्य प्राण का महात्म्य जब जान लिया वागादि ने तो वागादि मुख्य प्राण की स्तुति करना प्रारंभ करते हैं। तो वागादि ने मुख्य प्राण की स्तुति करते हुए मुख्य प्राण का सर्वात्मत्वादि अनेक गुण का वर्णन किया प्राण के, तो उनमें से पंचम जो मंत्र हुआ इसमें वागादियों ने कहा कि जो भी ये अग्नि है, सूर्य है, ये सब प्राण से अलग से दिखते हैं लेकिन वस्तुतः देखा जाए तो प्राण ही कि ये सब विभूतियां हैं। जैसे नदियों में गंगा जी, पर्वतों में हिमालय आदि हमें दिख रहे हैं जल रूप में या पृथ्वी रूप में, भगवान ने कहा ये मेरे ही स्वरूप है। पांडवों में अर्जुन जो दिख रहा है वह मेरे से भिन्न नहीं, मैं ही हूं, पांडवानाम धनंजय। तो ये विभूतियां हैं भगवान की, ऐसे प्राण की ही विभूतियां हैं अग्नि, सूर्य, पर्जन्य, इंद्र, वायु, पृथ्वी, चंद्रमा आदि ये सब। और जो भी मूर्त जगत हैं और देवताओं के स्थिति का हेतुभूत अमृत है, ये सब भी प्राण के द्वारा ही सुरक्षित है, प्राण ने ही इन्हें सुरक्षित रखा है। ऐसी स्तुति ही वागादि कर रहे हैं मुख्य प्राण की। जो छठवां मंत्र है इसमें भी वागादि प्राण की स्तुति करते हुए ये कह रहे हैं कि यह मुख्य प्राण ही सर्वाश्रय है, उसमें सर्वाश्रय तो गुण बताया जा रहा है दृष्टांत के द्वारा। तो छठवें मंत्र में है अरा इव रथनाभो प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम्, ऋचो यजुंसी सामानी यज्ञ क्षत्रम ब्रह्मच। तो कहते सर्वं प्राणे प्रतिष्ठितम्, तो सब शब्द से किसको लेना है सर्व शब्द से, तो आगे 16 कलाएं बताई जाएगी, प्राणादि 16 कलाएं बताई जाएगी। और उन 16 कलाओं में से श्रद्धादि जो कलाएं हैं बताया जाता है प्राण से ही उत्पन्न होती है, प्राणात् श्रद्धाम खम वायुर ज्योति रापह इत्यादि। जो एक मंत्र आएगा उसमें बताया जाएगा कि प्राण ने श्रद्धादि को उत्पन्न किया है। तो श्रद्धादि नाम पर्यंत ये 16 कलात्मक जगत जो उपाधि होता है जीव की, और जब तक ये श्रद्धादि जीव के साथ बने रहते हैं तब तक ही उसका संसार है। और जब श्रद्धादि समाप्त होते हैं, श्रद्धादि समाप्त होते हैं ब्रह्म ज्ञान से, श्रद्धादि उपाधियां हैं और उन उपाधियों का नाश होता है ब्रह्म ज्ञान से। जब ब्रह्म ज्ञान होगा और प्रारब्ध से ब्रह्मज्ञानी का शरीर जब तक प्रारब्ध है तब तक टिका रहेगा, और प्रारब्ध का भोग करके क्षय होने के बाद शरीरपात होगा, उस शरीरपात के समय ये सारे श्रद्धादि जीव की उपाधि भूत विलीन हो जाते हैं परमात्मा में। कैसे विलीन होते हैं तो कहा गया जैसे नदियां समुद्र के पास जाकर के अपना नाम और रूपात्मक उपाधि जो है उसे छोड़ देती है, समुद्र बनती है, फिर उन्हें उस जल को समुद्र में मिला हुआ गंगादि का जो जल है, समुद्र में मिलने से पहले तो उसे गंगा नर्मदा सिंधु इत्यादि नामों से कहा जाता था, लेकिन जैसे ही अपने गंगा आदि नामों को उस जल ने छोड़ दिया और एक सीमित प्रवाह रूप आकार था उसे छोड़ दिया रूप को और समुद्र में मिल गया, तो उसका समुद्र के नाम से ही कथन होता है। वहां जल नहीं है गंगा जी का ऐसा नहीं, लेकिन उस जल को गंगा जी नहीं कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा सागर समुद्र, इस नाम से ही कहा जाता है। ऐसे ब्रह्मज्ञानी की ये प्राणादि 16 कलाएं जब शरीरपात के समय परमात्मा में विलीन हो जाती है, वो छोड़ देता है जीव और स्वयं परमात्म रूप से अवस्थित होता है, तो उस समय फिर उसे कहा जाता है ब्रह्म इस नाम से ही। जब तक ये 16 कलाएं रहती हैं तब तक तो उसे कहा जाता है उन कलाओं का समूह रूप जो कार्यकरण संघात शरीर है, तो उसे व्यास जी कहा जाएगा, सुखदेव कहा जाएगा, उस कलाओं से अवचिन्न चैतन्य को शंकराचार्य जी कहा जाएगा। और लेकिन वो सब कलाएं छूट गई तो फिर वो चैतन्य नहीं रहा उन कलाओं से घिरा हुआ, ऐसा नहीं है। चैतन्य है, जैसे घट के फूट जाने पर घट से घिरा हुआ चैतन्य रहता है महाकाश रूप से, उस समय उसे घटाकाश नहीं कहा जाता, महाकाश कहा जाता है। ऐसे ब्रह्म को ब्रह्म इस नाम से कहा जाता है उस समय। सोलह कलाएं यही हैं, प्राण, श्रद्धा और आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, अन्न, वीर्य, इंद्रिया, मन, अन्न, वीर्य, तप और मंत्र, कर्म और लोक, नाम, ये सोलह कलाएं हैं। ये सोलह कलाएं जब तक रहेगी तब तक जीव और संसारी, ये कहा जाता है। और ये सोलह कलाएं जब ब्रह्मज्ञान होता है और शरीर शांत होता है उस समय परमात्मा में विलीन हो जाती है, उस समय उसे परमात्मा इस नाम से ही कहा जाता है। तो यहां पर तो उपासना का प्रकरण है, वो ज्ञान के प्रकरण में आगे आएगा। श्रद्धादि नाम पर्यंत जगत जो उपाधि है, जिसके रहने से संसार बना रहता है और जीव में संसारित्व रहता है, वह श्रद्धादि नामांत समस्त जगत, यहां पर सर्व शब्द से लेना। छठवें मंत्र में अरा इव रथनाभो सर्वम प्राणे प्रतिष्ठितम, यहां पर जो सर्व है, ये सर्व हुआ श्रद्धादि सारा उपाधिभूत जगत, और वह प्रतिष्ठित है यानी आश्रित है। किसके आश्रित है, कहां उसका आश्रय कौन है, तो कहते प्राणे प्रतिष्ठितम यानी आश्रितम, प्राण उसका आश्रय है। श्रद्धादि सारे जगत का आश्रय प्राण है, तो प्राण में ये श्रद्धादि किस प्रकार आश्रित है, प्रतिष्ठित है, इसे समझाने के लिए एक दृष्टांत बताया कि अरा इव रथनाभो, रथ का जो चक्र होता है उस रथ के चक्र में एक नाभि होती है, बीच वाला जो भाग, और अरा कहा जाता है, अरे कहते हैं वो जो लकड़ी होती है बाहर वाले लकड़ी के ऐसे और दोनों के घेरे में, उसे अरे कहते हैं। और वो सब अरे नाभि के अंदर वो रथकार उन्हें फिट कर देता है, तो नाभि के आश्रित माना जाता है उन आरों को। तो जैसे रथ चक्र के अरे अनेक हैं और वह रथ चक्र के नाभि से संलग्न है, नाभि के आश्रित है, नाभि उनका आश्रय है और अरे हैं उस नाभि के आश्रित, ऐसे प्राण हैं श्रद्धादि सारे जगत का आश्रय, और श्रद्धादि सारा जगत है प्राण के आश्रित। इसलिए प्राण में यहां पर एक गुण होगा सर्वाश्रयत्व, ये गुण बताया जाएगा। तो अरा इव रथनाभो प्राणे सर्वम प्रतिष्ठितम, यह वाक्य बता रहा है कि अरों के तरह अरे जैसे रथनाभि के आश्रित है, रथनाभि अरों की आश्रय है, ऐसे प्राण श्रद्धादि समस्त जगत का आश्रय है। और उस छठवें मंत्र के उत्तरार्ध में बताया जा रहा है कि वहां मंत्र शब्द से कहे गए जो है ऋक आदि उनको थोड़ा विशेष करके बताया जा रहा है अलग से। सर्व शब्द में वो आ जाते हैं। एक होता है गो बलिवर्द न्याय। गो बलिवर्द न्याय कहा जाता है संस्कृत में। गो शब्द का अर्थ मात्र गाय नहीं होता। गो शब्द गाय के लिए भी और बैल के लिए भी प्रयुक्त होता है। दोनों की गो शब्द का गाय और बैल दोनों अर्थ हैं। तो गावह गच्छन्ति कहने से ही गाय और गाय गो शब्द का अर्थभूत तो बैल है, दोनों जा रहे हैं, ये अर्थ निकल आता है। लेकिन ये कहा जाता है गावह गच्छन्ति बलिवर्दश्च, वहां बलिवर्द कहते हैं मात्र बैल के लिए। बलिवर्द शब्द अकेले बैल का परामर्शक है और गो शब्द सामान्य है बैल और गाय उभय के लिए। जैसे मनुष्य शब्द पुरुष और स्त्री दोनों के लिए सामान्य है, लेकिन पुरुष शब्द ये पुरुष विशेष के लिए सामान्य हुआ। ऐसे बलिवर्द शब्द है विशेष, वह केवल बैल के लिए होगा। तो गो बलिवर्द न्याय वहां पर लगाया जाता है जहां गो शब्द के उच्चारण के साथ बलिवर्द शब्द का भी उच्चारण है, तो वहां उसका एक विशेष अर्थ बताना होता है, उसकी विशेषता दिखाने के लिए, महत्व दिखाने के लिए अलग से बलिवर्द शब्द का भी प्रयोग करते हैं। सामान्य शब्द से न कह करके विशेष शब्द से भी निर्देश किया। ऐसे यहां पर भी सर्वम कहने से जब श्रद्धादि सारा जगत आ गया, तो श्रद्धादि 16 कलाओं में एक मंत्रात्मक कला भी बताई गई ना, तो मंत्र कहने से तो मंत्र के ये तीन प्रकार हैं, ऋक यजु साम, ये भी आई जाते हैं मंत्र शब्द से ही, और कर्म शब्द से ही यज्ञ भी आ जाता। लेकिन इनका एक विशेष नाम लेकर के कथन किया जा रहा है इनकी एक विशेषता दिखाने के लिए, बाकी कलाओं की अपेक्षा ये विशेष है ये दिखाने के लिए। इस अभिप्राय से यहां पर कहा कि ऋचः यजुंसी सामानी, ये तीन प्रकार के मंत्र ऋग्वेद के मंत्र ऋचः शब्द से, ऋक् शब्द से कहे जाते हैं। यजुर्वेद के यजु ये इस नाम से कहे जाते हैं मंत्र, और सामवेद के मंत्रों का नाम है साम। और इन मंत्रों के द्वारा होने वाला कर्म जो यज्ञ मंत्र से निर्वर्तित होता है, इसलिए वो यज्ञ भी, और इस वैदिक मंत्रों से होने वाले यज्ञ रूप कर्म के जो अधिकारी हैं और संरक्षक हैं वो कौन, क्षत्रम यानी क्षत्रिय और ब्रह्म यानी ब्राह्मण, और च शब्द से तीसरा वर्ण भी लेना। हाँ, तो ये त्रैवर्णिक कर्माधिकारी वैदिक कर्माधिकारी है ना, तो उन्हें यानी वैदिक मंत्र वैदिक मंत्रों से होने वाले कर्म और उन कर्मों के निर्वर्तक ये सब भी प्राणे प्रतिष्ठितम, ऐसे लगाना, ये सब प्राण में प्रतिष्ठित है। ऋचाएं यजु और साम संज्ञक मंत्र प्राण में प्रतिष्ठित है, यज्ञ उनसे होने वाला वो भी प्राण में ही प्रतिष्ठित है, और यज्ञ के निर्वर्तक जो है वे भी प्राण में ही प्रतिष्ठित है। का मतलब सारा जगत प्राण ने ही धारित करके रखा है। ये पूरा ब्रह्मांड समष्टि शरीर माना जाता है ना, वो समष्टि प्राण के द्वारा धारित है। जैसे वेष्टि प्राण के द्वारा ये वेष्टि शरीर धारित है, ऐसे समष्टि प्राण समष्टि शरीर को धारण करके रखता है। ये यहां पर बताया गया कि ये सब प्राण के द्वारा धारित है और समष्टि शरीर अभिमानी को कहा जाता है विराड। वो विराड भी कोई इस मुख्य प्राण से अलग नहीं, वो इसी मुख्य प्राण का ही कार्य है। इस दृष्टि से सातवें मंत्र के प्रारंभ में इसी प्राण को प्रजापति यानी विराड नाम से भी कहा जा रहा है कि प्रजापतिश्चरसि गर्भे त्वमेव प्रतिजायसे तुभ्यं प्राण प्रजा त्विमा बलिम हरन्ति यह प्राणैः प्रतितिष्ठसि। तो ये कहा जा रहा है कि जो प्रजापति हैं यानी शास्त्र में प्रसिद्ध विराड नाम का पुरुष है, विराड की एक स्वतंत्र उपासना ही आती है छांदोग्य उपनिषद में, वैश्वानर उपासना। एक विराड पुरुष कहा गया जिसका गीता के 11वें अध्याय में भी वर्णन है ना, विश्वरूप। हाँ पूजा, लेकिन ऐसी पूजा नहीं होती दही दूध से अभिषेक आदि, उसका उसकी पूजा ही है, उसकी उपासना है। तो विराड हिरण्य सूत्रात्मा का कार्य होने से प्राण है हिरण्य गर्भ नहीं सूत्रात्मा, यानी एक ही चैतन्य को हिरण्य गर्भ भी और सूत्रात्मा भी कहते हैं। जब समष्टि बुद्धि को प्रधानता देकर के, समष्टि बुद्धि रूप उपाधि को प्रधानता देकर के उसी चैतन्य का व्यवहार होगा तो उसे कहा जाएगा हिरण्यगर्भ, और वही समष्टि प्राण रूप उपाधि भी उसकी है ना, और समष्टि प्राण रूप उपाधि को महत्व देकर के जब उसको कहा जाएगा तो उस समय उसे कहा जाएगा सूत्रात्मा। तो प्राण समष्टि प्राण को लेते हैं तो सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ को ही सूत्रात्मा कहते हैं प्राण प्रधानतया, बुद्धि प्रधानतया हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा वैदिक ब्रह्मा। हाँ पुराणों के ब्रह्मा तो हिरण्यगर्भ से छोटे हैं, हिरण्यगर्भ तो समष्टि सूक्ष्म उपाधि वाले हैं ना, जो चतुर्मुख ब्रह्मा है वो अलग है पुराणों के, अलग है का मतलब वो हिरण्यगर्भ के ही दूसरे रूपांतर है। वो हिरण्यगर्भ उनसे उनका कारण है, जो पुराणों में ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं वे साकार हैं और स्थूल उपाधि हैं, शंख चक्र गदादी है उनके हाथ में, और ये तो समष्टि सूक्ष्म बुद्धि उपाधिक है, समष्टि सूक्ष्म प्राण उपाधिक है। तो वो इन साकार की अपेक्षा हाँ, इसलिए भगवान कृष्ण ने जिस ब्रह्मा जी का अभिमान दूर किया था वो पौराणिक ब्रह्मा जी, वो ये हिरण्यगर्भ बने। हाँ और इनका भी एक साकार स्वरूप है, लेकिन वो है हिरण्य स्मश्रु हिरण्यकेश इत्यादि छांदोग्य उपनिषद में पहले अध्याय के 6वें 7वें ब्राह्मण में बताया गया, वो हिरणमय पुरुष है। वो हिरणमय पुरुष वो साकार सगुण साकार है, और एक सगुण निराकार है वो कारण है, सगुण साकार है वो कार्य उपाधि का, और कार्य उपाधि में भी फिर केवल सूक्ष्म कार्य उपाधि, और सूक्ष्म कार्य उपाधि के साथ साथ स्थूल कार्य उपाधि को भी लेकर के वो विराट बन जाता है, जो सूत्रात्मा है, जो हिरण्यगर्भ है, वही विराट भी कहलाता है। जब ये पूरा स्थूल कार्य अपनी उपाधि के रूप में स्वीकार करता है तो उसे विराट भी कहते हैं, वैश्वानर भी कहते हैं, विश्वरूप भी कहते हैं। वो सूक्ष्म उपाधि तो रहेगी, सूक्ष्म उपाधि के साथ साथ स्थूल उपाधि भी स्वीकार करेगा तो उसका विराट नाम आएगा। उस विराट के अंदर हिरण्यगर्भ भी है, सूत्रात्मा भी है और ईश्वर भी है। कारण हाँ, तो उपासना यदि आप स्थूल उपाधिगत गुणों को लेकर के भी कर रहे हैं तो वो मानी जाती है विराट की उपासना, और यदि सूक्ष्म उपाधिगत विशेषताओं को लेकर के मात्र चिंतन हो रहा है तो हिरण्यगर्भ की या सूत्रात्मा की उपासना। हाँ, वो इसमें आएगी, सूक्ष्म में आएगी, लेकिन उसमें उस सूक्ष्म जो सूत्रात्मा है, सूक्ष्म कार्य उपाधि समष्टि प्राण, उसको कहा जा रहा है स्थूल जगत का आश्रय, उसी के आश्रय स्थूल जगत है। तो स्थूल जगत का आश्रय ये एक गुण है, उसमें आश्रयत्व, और ये है किसमें? सूक्ष्म में, समष्टि प्राण में। इसलिए उपासना तो होगी प्राण की ही। उपनिषदों का उद्देश्य है निर्विशेष में साधकों की बुद्धि को पहुंचाना, वो निर्विशेष का आत्मरूप से अनुभव ही मुक्ति का साधन है। उस निर्विशेष की अनुभूति कराने के लिए जिनके बुद्धि में स्थूल जगत को ही ग्रहण करने का अभ्यास है, उनको सीधा कहेंगे सारी विशेषताओं को छोड़ करके अपने मन को बिल्कुल निर्विशेष भाव में रखो, तो असंभव होगा उससे। इसलिए कहते हैं यदि स्थूल में ही अपनी अहंता रखनी है तो छोटा सा जो स्थूल विशेष है, ये 3.5 हाथ का वेष्टि कार्यक्रम संघात, इसी को मात्र अपनी अहंता का आलंबन मत बनाओ। यदि आलंबन बनाना ही है, आश्रय बनाना ही है, आश्रय लेना है, तो थोड़ा अपने अहंता का आश्रय वो लो कि जिसमें ये सारे स्थूल वेष्टि समा जाए, तो वो है विराट। तो विराट की अहंग्रह उपासना बताई जाती है उसके लिए, जो अपने मन को स्थूल से निकाल करके सूक्ष्म में भी समाहित नहीं कर पाता, सूक्ष्म कार्य में भी, स्थूल कार्य में ही विचरण करती रहती है बुद्धि, तो उसे कहा जा कह रही है उपनिषदे उसका हितैषी बन करके कि तुम क्या करो कि अपनी अहंता को ये वेष्टि 3.5 हाथ के स्थूल शरीर से निकालो और सारे स्थूल ब्रह्मांड में उसे स्थापित करो, उसे मैं मान लो। तो ये समष्टि स्थूल कार्य उपाधिक ब्रह्म की उपासना हो जाएगी, उसे वैश्वानर की उपासना कहा जाएगा, अहंग्र उपासना हो जाएगी। उससे कम से कम इस वेष्टि से तो निकलेगा, फिर उसे नहीं तो एक एक स्थूल वेष्टि से निकालना पड़ेगा। अब पहले एक वेष्टि से निकाल करके पूरी स्थूल उपाधि को मैं के रूप में पकड़ा दें, उसकी अहंता के आलंबन को बना दें, फिर कहेंगे कि वहां से भी हटा दो अपनी अहंता को, और सूक्ष्म में ले जा। तो सूक्ष्म में भी वेष्टि सूक्ष्म में न ले जा करके समष्टि सूक्ष्म में ले जाओ। तो समष्टि सूक्ष्म प्राण को सूत्रात्मा को मैं के रूप में ग्रहण करो, उसे उसका मैं के रूप में चिंतन करो, तो उसके बुद्धि में से स्थूल छूट जाएगा। इस प्रकार सूक्ष्म के ओर बुद्धि जाएगी और जैसी जैसी सूक्ष्म ग्राही होती जाएगी तो फिर ये समष्टि प्राण से भी व्यावृत्त करके आभ्यंतर अभ्यंतर ले जाया जाएगा। कारण उपाधि को पकड़ाया जाएगा, अंतर्यामी को, और इसलिए शांडिल्य विद्या आदि आती है, दहर विद्या आती है उपनिषदों में, वो है कारण ब्रह्म की उपासना, सगुण निराकार की उपासना। उसे मय के रूप में पकड़ लो। यदि कार्य को छोड़ करके भी बुद्धि रह सकती है, कारण का चिंतन करने में समर्थ है, तो कहता है फिर वेष्टि और सूक्ष्म और स्थूल दोनों कार्य को छोड़ करके कारण मात्र का चिंतन करो। और फिर उस कारण उपाधि का भी, जो गीता के 15वें अध्याय में जिसे अक्षर पुरुष कहा गया, उस अक्षर पुरुष का भी आश्रय छोड़ दो और निरालंब बन जाओ। पुरुषोत्तम को अपने अहंता के आश्रय के रूप में पकड़ लो, तो क्षर और अक्षर पुरुष से अतीत जो पुरुषोत्तम है, वह पुरुषोत्तम मैं हूं, ऐसा चिंतन वो हो जाता है उपनिषदों का निधिध्यासन, निर्विशेष का चिंतन, उसे निधिध्यासन कहते हैं। और कारण ब्रह्म की मैं के रूप में यदि स्मृति कर रहे, चिंतन कर रहे, तो वो उपासना हो जाती है, हाँ, अहंग्रह उपासना। और सूक्ष्म उपाधि की कर रहे हैं तो वो हिरण्यगर्भादि की अहंग्रह उपासना, और समष्टि स्थूल को लेकर के उपासना कर रहे हैं अहंग्रह, तो वो हो जाती है विराट की, वैश्वानर की अहंग्रह उपासना। तो किसी न किसी को मुक्त होने के लिए पकड़ना है, लेकिन लक्ष्य है पुरुषोत्तम। उस पुरुषोत्तम में स्थिर होना है, पुरुषोत्तम की मैं के रूप में अनुभूति करनी है। उस लक्ष्य पे पहुंचाने के लिए कोई न कोई बीच में सहारा श्रुति देती है हमारे मन को। तो यहां पर दिया जा रहा है प्राण को, समष्टि प्राण को, और वो समष्टि प्राण कैसा है, समष्टि स्थूल को सहारा देता है, आश्रय देता है। सब स्थूल जिसके आश्रित हैं, ऐसा समष्टि प्राण मैं हूं, ये चिंतन करना है, वो ये उपासना है। इसे कहा जाता है प्राण की अहंग्र उपासना। इसके लिए ये बताना है कि समष्टि स्थूल रूप जिसको विराट कहा जाता है, प्रजापति कहा जाता है, वह भी इसी प्राण का ही कार्य होने से प्राण रूप ही है। जैसे सोने का कार्य अंगूठी सोना ही है, मिट्टी का कार्य घड़ा मिट्टी ही है, तंतुओं का कार्य वस्त्र तंतु ही है, ऐसे प्राण का कार्य जो समष्टि स्थूल ब्रह्मांड है, वह भी प्राण का प्राण ही है, प्राण ने ही वो रूप धारण किया है। इस दृष्टि से उसे बताया जा रहा है सातवें मंत्र में पहले पद से कि प्रजापति जो शास्त्र में प्रसिद्ध है विराट नाम से, वैश्वानर नाम से, और गीता के 11वें अध्याय में विश्वरूप नाम से, जो विराट प्रसिद्ध है, वह विराट भी कोई और नहीं है, आप ही हो, आपका ही स्थूल रूप वो विराट है कार्य होने से। जैसे सोने का ही एक कार्य विशेष विकृत रूप है अंगूठी, एक विकृत रूप है कुंडल, एक विकृत रूप है किरीट यानी मुकुट आदि, ऐसे ये प्रजापति को भी कहा जा रहा है कि आप ही हो। यानी मुख्य प्राण को कहा जा रहा है, हे प्राण ऐसा संबोधन करके कि प्रजापति ही, यानी शास्त्र में जो प्रजापति नाम से प्रसिद्ध हैं स्थूल समष्टि कार्य अधिक, वो भी आप ही हो, ऐसे ऊपर से जोड़ देना। और आगे कहा जा रहा है अहंग्रह उपास, हाँ अहंग्रह उपासना का परिपाक हो गया, इसका द्योतक है कि भोजन पूरा हुआ, इसका द्योतक होता है, उसको पूछना नहीं पड़ता दूसरे को, जो भोजन कर रहा है उसकी भूख शांत हो गई, तृप्ति आ गई, तो माना जाता है भोजन पूरा हुआ। ऐसे अहंग्रह उपासना यदि पूरी हो जाएगी तो अहंग्रह उपासना का उद्देश्य होता है कि आपकी अहंता को वेष्टि वर्तमान में जो उपाधि है उससे निकाल करके सहज भाव से, जैसे उपासना शुरू करने से पहले वेष्टि शरीर को मैं के रूप में अहम वृत्ति पकड़ती है, इतने सहज भाव से जिसकी अहंग्रह उपासना कर रहे हैं उसे पकड़ लें। जब भी अहम वृत्ति चित्त में उदित हो तो समष्टि को ही आलंबन करते हुए उत्पन्न हो रही हो, तो माना जाता है कि अहंग्रह उपासना का परिपाक हो गया, इतनी सहज हो जाए, मैं के रूप में अनुभव में उपास्य का स्वरूप आ जाए, अपने वेष्टि उपासक स्वरूप को भूल जाए। ध्यान परिपक्व हुआ, इसका द्योतक होता है कि ध्याता और ध्यान ये दोनों ध्येय रूप हो जाते हैं, ध्येय ही ध्येय रहता है, ध्याता और ध्यान ये दोनों हमारे स्मृति पट से हट जाते हैं, स्मृति पटल में नहीं आते, केवल ध्येय ही ध्येय आता है। तो माना जाता है कि ध्यान की परिपक्व अवस्था है, तो उपासना भी एक ध्यान ही है, मैं के रूप में समष्टि प्राण का ध्यान हो रहा है, जो यहां पर गुण बताए जा रहे हैं उसमें उन गुणों से युक्त प्राण का मैं के रूप में ध्यान करते 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 ध्याता अपने आप को भूल जाए, ध्येय रूप समझे, भूलने का अर्थ ये है कि ध्येय रूप समझे, ध्येय ही ध्येय सब जगत ही है, वो ध्यान क्रिया भी उपासना भी हट जाए, उपासक भी हमारे याद में ही न आ जाए कि मैं उपासक हूं और ये उपास्य है, उपास्य ही उपास्य दिखे, तो माना जाता है कि अहंग्रह उपासना का परिपाक हो गया, पूर्ण हो गई अहंग्रह उपासना, ये उसका द्योतक है। तो प्रजापति ही यानी शास्त्र में वर्णित जो वैश्वानर हैं वह आप ही हो, ऐसा कौन कह रहे हैं, प्राण का महात्म्य समझ में आ गया जिनके ऐसे वाग आदि, उनका अभिमान दूर हुआ और प्राण की महत्ता समझ में आ गई कि प्राण ही सारे जगत का आश्रय है, इस तो उसकी स्तुति कर रहे हैं प्राण की, और स्तुति के माध्यम से गुण बताए जा रहे हैं। और आगे कह रहे हैं कि गर्भे त्वमेव चरसी, तो गर्भ में यानी उदर में पेट में माता और पिता के आप ही विचरण करते हो, ये समष्टि प्राण का ही विभक्त रूप है, कौन वेष्टि प्राण, अरे वेष्टि प्राण पंचाग्नि विद्या एक आती है वैश्वानर, क्या नाम वो इसके छांदोग्य उपनिषद तथा बृहदारण्यक उपनिषद में पंचाग्नि विद्या, उस पंचाग्नि विद्या में बताया गया है कि कर्म करने वाले शास्त्रीय कर्म करने वाले जीव पुण्य कर्म करके जब स्वर्ग में जाते हैं और स्वर्ग से वापस आते हैं तो एक तो पहले अग्नि माना गया स्वर्ग को अग्नि, और वो स्वर्ग रूपी एक आहवनी अग्नि है, उसमें आहुति पड़ जाती है। ये यहां यज्ञ आदि कर्म करने वाला जो यजमान वो वहां चला जाता है, यजमान शरीर छोड़ करके सूक्ष्म शरीर और भूत सूक्ष्मों को लेकर के वहां गया, तो स्वर्ग लोक रूपी अग्नि में उसकी आहुति पड़ गई और वहां फिर वो भूत सूक्ष्म जो साथ में ले गया था देवता शरीर बन जाता है। तो सोम राजा उसे कहा गया देवता शरीर को, और वो उस सोम राजा नामक देवता शरीर में अभिमान करके रहता है। कब तक? जब तक यहां किए हुए पुण्य कर्म प्रारब्ध बन करके वहां भोग रहा है उन पुण्य कर्मों का फल, और वो फलोपभोग करके प्रारब्ध वहां का शांत जब तक नहीं होता तब तक तो रहता है स्वर्ग में। और क्षीणे पुण्य यानी पुण्यात्मक प्रारब्ध रूपी कर्म जब स्वर्ग में स्वर्गीय भोगों का अनुभव करके समाप्त हुआ तो मर्त्य लोकम विशन्ति, मृत्यु लोक में आता है, तो सीधे स्वर्ग से मृत्यु लोक में नहीं आता है। वहां तो उनका शरीर भी जैसे मुर्दा यहां दिखता है ऐसा स्वर्ग में नहीं होता। वो जैसे उनको सूचना दी जाती है कि अब आपका यहां के निवास का हेतुभूत कर्म समाप्त हुआ, आपको मृत्यु लोक में जाना है, ये सूचना पाते ही उसका शरीर पानी पानी हो जाता और पानी बन करके बह करके आ जाता है पर्जन्य में, और पर्जन्य से आता है फिर वो बारिश के माध्यम से पृथ्वी पर। तो जब बह रहा है तो शरीर का पानी होकर के बह रहा है, लेकिन भूत सूक्ष्म और सूक्ष्म शरीर रोजीव उसी पानी में है ना, जो स्थूल शरीर वहां के बाकी अंशों से बना था वो बह रहा है, लेकिन भूत सूक्ष्म आदि जो है यहां से ले गया था वो सब साथ में आ जा बहते हुए पर्जन्य में आते हैं, पर्जन्य से वृष्टि के माध्यम से पृथ्वी पर गिरता है, पृथ्वी से फिर कहीं खेत में गेहूं चावल आदि के फसल के साथ संलग्न होकर के उसके जिस घर में जन्म होना है उस घर के माता पिता के द्वारा खाया जाने वाला जो गेहूं या चावल दाल आदि है उनसे संलग्न हो जाता है, फिर वो माता पिता उसे पका करके खा लेते हैं, उसमें जीव भी होता है उस गेहूं चावल का आदि, उसको फिर चक्की में पीसते भी हैं, और इडली बना करके खाना होगा तो उसमें वो ये कर लेते हैं, उस प्रकार से उबालते हैं, और वो सब जो है ये हो जाता है खाने के बाद पेट में वो सप्तम धातु के रूप में रहता है, और फिर माता के गर्भ में वो शरीर का रूप धारण करता है, उसका भूत सूक्ष्म जाकर के शरीर का रूप धारण करेगा। तो उसे यहां पर कहा गया कि ये वहां भी प्राण तत्व है ना, ये प्राण समष्टि प्राण ही वेष्टि प्राण के रूप में भी अलग अलग उपाधि को लेकर के हैं सब वेष्टि जीवों के लिए, तो मुख्य प्राण को ही ये सब कह रहे हैं कि आप ही माता पिता के उदर में चरसी यानी विचरण करते हो रहते हो, वहां से जहां कहीं भी जाना होगा तो प्राण के बिना तो जीव प्राण ही लेकर के जाता है ना सबको भूत सूक्ष्मारूढ़ होकर के, इसलिए आप ही माता पिता के गर्भ में भी और 84 लाख प्रकार के माता पिता और उनके गर्भ में आप ही विचरण कर रहे हो, उस रूप में समष्टि प्राण के रूप में नहीं, वो जीव का उपाधिभूत प्राण बन करके आप ही विचरण कर रहे हो। और फिर एक जब समय विशेष हो जाता है माता के गर्भ में रह करके, फिर त्वमेव प्रतिजायसे, कि तुम ही प्रति शब्द का अर्थ है प्रतिरूप, प्रतिरूप का अर्थ होता है सदृश समान। यदि माता पिता मनुष्य हैं तो माता पिता के जैसा ही आकार धारण करके का मतलब मनुष्य बन करके फिर जन्म लेते हो। और यदि देवता है माता पिता तो देवता के रूप में जन्म लेते हो, और मनुष्य की अपेक्षा निकृष्ट योनि में गया है तो उस माता पिता के सदृश बन करके तुम ही जन्म लेते हो। तो त्वमेव प्रतिजायसे, अपने माता पिता के सदृश होकर के तुम ही प्रकट होते हो। और हे प्राण, ये संबोधन है उत्तरार्ध में, तुभ्यम हे प्राण, तो यहां पर प्राण संबोधन है कि इमा प्रजा तुभ्यम बलिम हरंती। तो ये सारी जो प्रजा है यानी जीव है, वे क्या कर रहे हैं, तत्त शरीरधारी 84 लाख प्रकार के जो योनि में गए हुए जीव हैं, ये सब जो भोक्ता है ना प्राण, भूख और प्यास प्राण का धर्म है, का मतलब भोक्ता है प्राण, और प्राण को ही संतुष्ट करने के लिए, प्राण को संतुष्ट करने के लिए, तृप्त करने के लिए जो चक्षुरादि इंद्रियां हैं, इनके माध्यम से रूपादि विषय रूप भोगों को अंदर पहुंचाते हैं, मुख से रस विषय को रसन इंद्रिय से प्राण तक पहुंचाते हैं, चक्षु इंद्रिय से रूप विषय को पहुंचाते हैं, श्रोत्र इंद्रिय से अभी आप प्राण को ही संतुष्ट करने के लिए प्राण के रुचिकर, आपकी उपाधिस्थ प्राण के रुचिकर आध्यात्मिक शब्दों को श्रोत्र इंद्रिय के माध्यम से ग्रहण करके प्राण तक पहुंचा रहे हैं, उससे प्राण संतुष्ट हो रहा है। यानी जो वो चाहता है वह विषय तत्तद इंद्रिय के माध्यम से प्राण तक पहुंचाते हैं। तो इमा प्रजा शब्द से लेना है ये सब प्राणी, और ये सब प्राणी क्या कर रहे हैं कि आपको ही संतुष्ट करने के लिए आपके रुचिकर जो भोग है वो बलि शब्द का अर्थ है। बलि शब्द का अर्थ होता है भेंट, और वो भेंट है रूपादि विषय, और चक्षुरादि इंद्रियों के माध्यम से रूपादि विषयों को अंदर ले जा करके आपको ही चढ़ाया जा रहा है, आपको ही भेंट दी जा रही है। हे प्राण, और आगे कहते हैं कि यह प्राण ही प्रतितिष्ठसी, कि जो आप इस शरीर में चक्षुरादि प्राण ही, स्तृतीयांत प्राण शब्द से लेना चक्षुरादि इंद्रियों को, गौण प्राण है ये भी, तो चक्षुरादि इंद्रियों के साथ जो आप रहते हो यहां, तो इस शरीर में रहने वाले चक्षुरादि इंद्रिया आपको अपना मुखिया मान करके, प्रधान मान करके, अपने में वरिष्ठ मान करके, जो वरिष्ठ होता है श्रेष्ठ होता है उसकी सेवा सब कनिष्ठ करते हैं ना, तो आपके रुचिकर भोग आप तक पहुंचा करके ये सब आपके सेवक स्थानीय चक्षुरादि हम, यही सब इंद्रिया कर रहे ना कि चक्षुरादि जो हम हैं आपकी सेवा कर रहे हैं, सेवा में लगे हैं, इस प्रकार ये स्तुति की जा रही है। का अर्थ है यहां पर भोक्तृत्व तो एक गुण बताया प्राण का, और बाकी सब इंद्रिया तो सेवक है उसके। बाकी की चर्चा आठवें मंत्र से आगे की हम लोग कल करेंगे।